Iran Radio Podcast.
वर्षों पहले लंदन में एक गरीब व्यक्ति हर रोज तट पर जाता था ताकि दूर दराज की यात्रा से लौटने वाले जहाज़ों के कैप्टन से बची खुची चीज़ें खरीदकर उन्हें शहर में बेच सके। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 46वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे एक गरीब व्यक्ति की, तो अक्सर वो पूर्वी देशों के तटों से इकट्ठा किए गए मोती खरीदता था। अंग्रेज महिलाओं को मोतियों से सजे बॉक्स काफ़ी पसंद थे। इस गरीब आदमी के दो बेटे थे जिनके नाम मार्क्स और सैमुअल थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने देखा कि उनके पिता सीप, शुतुरमुर्ग के पंख, बेंत और काली मिर्च खरीद और फरोख्त करके धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाते गए और यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। अपने पिता की मौत के बाद उनके बेटों ने अपना व्यवसाय और बढ़ाया और शेल नामक एक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने सुदूर पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया। थोड़े ही समय में वो बड़े जहाज़ों के मालिक बन गए जिन पर सीपों की छवियाँ उकेरी गई थीं। जब रॉकफेलर की तेल कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ने चीन और जापान जैसे सुदूर पूर्वी देशों के बाज़ारों में पैठ बना ली, तो रॉथचाइल्ड परिवार ने भी यहाँ के बाज़ारों पर नियंत्रण करने का सपना देखना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने मोतियों की कंपनी शेल को प्रस्ताव दिया कि वो उनके तेल को पूर्वी एशिया तक पहुँचाने में मदद करे। शेल ने उत्साहपूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे बैरल या छोटे टिन के कंटेनरों के बजाय जहाज़ों पर बड़े टैंकरों में तेल की ढुलाई करते थे। कुछ समय बाद एशिया में तेल की बिक्री पर रॉथचाइल्ड का एक अधिकार शेल को हस्तांतरित हो गया। इंग्लैंड स्थित शेल ने काला सागर, भूमध्य सागर और स्वेज नहर के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑयल की तुलना में चीन तक तेज़ी से तेल पहुंचाया। स्टैंडर्ड ऑयल को अपने जहाज़ों को अमेरिका और पूर्वी तट से प्रशांत महासागर पार करके चीन तक पहुँचाना पड़ता था। कम समय और कम परिवहन लागत की वजह से रॉथचाइल्ड कंपनी का तेल सस्ता पड़ता था। इसके बावजूद चीनी अभी भी स्टैंडर्ड ऑयल को ज़्यादा पसंद करते थे। चीनी नागरिक इस कंपनी के टिन के खाली कंटेनरों का कई तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। इन कंटेनरों से वे अपने घरों पर सायबान बनाते थे और मुर्गियों के लिए पिंजरे बनाते थे। कभी कभी वे इनका इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए भी किया करते थे। इस स्थिति को देखते हुए शेल ने फौरन अपनी नीति में बदलाव किया और टैंकरों के बजाय लाल टिन के कंटेनरों में अपना तेल चीन पहुंचाना शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड ऑयल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, इसलिए स्टैंडर्ड ऑयल ने एक नया उपाय सोचा। इस बार उन्होंने स्वेज नहर की सुरक्षा के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। 1891 में गर्मियों के मौसम में लंदन के दो बड़े वकीलों ने स्वेज नहर से तेल के जहाज़ों के गुजरने पर कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने अपने मुवक्किल का नाम जाहिर किए बिना स्वेज नहर से तेल टैंकरों के गुजरने के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इसके लिए उन्होंने नहर की सुरक्षा को बहाना बनाया। उनका दावा था कि उस इलाके की भीषण गर्मी में अगर किसी तेल टैंकर में आग लग जाएगी तो क्या होगा। अगर सैंड स्टॉर्म की वजह से तेल टैंकर दूसरे जहाज़ों से टकरा जाएंगे तो बहुत भयानक त्रासदी हो सकती है। शेल कंपनी को विश्वास था कि ये दोनों वकील स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी द्वारा खरीदे गए हैं। इन दो अनुभवी वकीलों के खिलाफ लड़ाई में वो अकेले नहीं थे, रॉथचाइल्ड भी उनके समर्थन में थे। रॉथचाइल्ड ने ही ब्रिटिश सरकार को मिस्र से स्वेज नहर के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीदने और उसका प्रशासन अपने हाथ में लेने की मदद की थी। रॉथचाइल्ड द्वारा की गई सेवा के बदले में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था कि उनके तेल टैंकरों को इस नहर से गुजरने में कोई समस्या नहीं होगी। ब्रिटेन की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने भी पुष्टि कर दी थी कि शेल के जहाज़ पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने जो लड़ाई वकीलों को सामने करके शुरू की थी उसमें उसे हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑयल के पास एक और चाल थी। रॉकफेलर ने इस बार एशियाई देशों से तेल निकालने और उसे एशिया में ही बेचने की योजना बनाई। रॉकफेलर के सामने शेल और रॉथस्चाइल्ड के अलावा एक और प्रतिस्पर्धी था। ये एक डच जवान था जिसका नाम ज़िलगर था। ज़िलगर एक कंपनी का मैनेजर था जो इंडोनेशिया में तंबाकू का उत्पादन करती थी। हॉलैंड ने धीरे धीरे इंडोनेशिया समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया था। उस समय इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। एक दिन जब ज़िलगर अपने एक स्थानीय सलाहकार के साथ अपने घर के आसपास के जंगल में चहलकदमी कर रहा था, अचानक तूफान शुरू हो गया। ये लोग बहुत मुश्किल से जान बचाकर किसी तरह तंबाकू के एक गोदाम तक पहुंच गए। कुछ देर बाद ज़िलगर के सलाहकार ने एक मशाल जलाई जिसकी रोशनी ने ज़िलगर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ज़िलगर ने मशाल की लकड़ी के बारे में अपने सलाहकार से पूछा, लेकिन उसने जवाब दिया कि ये रोशनी उस काले पदार्थ की वजह से है जो एक सोते से निकलता है। अगले दिन ज़िलगर ने उस व्यक्ति से कहा कि वो उसे वहाँ लेकर चले। इस सोते से जो गंध निकल रही थी वो केरोसिन तेल की गंध की तरह थी जो पिछले कई वर्षों से विदेशी कंपनियां इस द्वीप पर लाकर बेचती थीं। ज़िलगर ने वहां से इस पदार्थ का नमूना लिया और उसे टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया। टेस्ट रिपोर्ट देखकर वो उछल गया। इस काले पदार्थ में 62% केरोसिन तेल था। ज़िलगर भी मैदान में कूद पड़ा और हॉलैंड के किंग ने उसे अपनी कंपनी का नाम रॉयल रखने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार 1890 में रॉयल डच कंपनी की स्थापना हुई। रॉयल डच की स्थापना के कुछ समय बाद ज़िलगर का निधन हो गया। उसके बाद केसलर नाम का एक शख्स ज़िलगर का उत्तराधिकारी बना। केसलर ज़िलगर की तुलना में अधिक मेहनती था और उसने 2 साल में ही कंपनी का उत्पादन 6 गुना बढ़ा दिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के तेल बाजारों पर कब्जा कर लिया। केसलर को इस बात का डर था कि कहीं अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक को इस सफलता की खबर ना मिल जाए और वो उन्हें मार्केट से बाहर करने के लिए दक्षिण एशियाई बाज़ारों में सस्ते तेल की सप्लाई ना शुरू कर दे। स्टैंडर्ड ऑयल अपने प्रतिस्पर्धी को बाहर करने के लिए ये चाल चलती थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में तेल सस्ता करके दूसरे कोने में उसे महंगा कर देती थी। केसलर ने अपने स्टाफ को चेतावनी दे रखी थी कि कंपनी का उत्पादन और मुनाफा लीक नहीं होना चाहिए। उसका कहना था कि हम नज़रों में नहीं आने चाहिए, लेकिन केसलर और उसकी कंपनी की सफलताएं स्टैंडर्ड ऑयल के जासूसों की नज़रों से नहीं छिप सकी। रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड दोनों ही रॉयल डच को टेक ओवर करना चाहते थे। स्टैंडर्ड ऑयल के प्रतिनिधि नई रॉयल डच कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि शेल ने भी इसी इरादे से रॉयल डच के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अगर ये दोनों कंपनियां एक हो जाएं तो वे स्टैंडर्ड ऑयल के लिए एक बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी। अमेरिकियों ने और भी लुभावने प्रस्ताव दिए, लेकिन रॉयल डच के डच मालिकों को यकीन था कि ये मीठे शब्द उनकी कंपनी को निगल जाने की एक चाल है। उन्हें विश्वास था कि अमेरिकी दक्षिण पूर्व एशिया में तेल के नए स्रोत खोजने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उसके साथ गठबंधन की एक लुभावनी तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। शेल के प्रस्तावों का भी कोई नतीजा नहीं निकला था। 3 पक्ष भविष्य में होने वाली घटनाओं के कारण नई परिस्थितियां उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी एशिया में दोनों प्रतिद्वंदियों शेल और रॉयल डच की गतिविधियों के प्रति सावधान थी। स्टैंडर्ड ऑयल के जासूस इन देशों में यूरोपीय लोगों के आने जाने पर नज़र रखते थे। 1896 में इन जासूसों में से एक ने सिंगापुर से अमेरिका स्थित स्टैंडर्ड ऑयल कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजी। शेल कंपनी के अध्यक्ष की भतीजी बताई जाने वाली एक लेडी लंदन में सिंगापुर पहुंची और वो वहां से तुरंत ब्रुनेई के लिए रवाना हो गई। चूँकि ये वही व्यक्ति है जिसने सिंगापुर और दक्षिणी चीन में शेल के तेल भंडारों का निर्माण किया था, इसलिए उसकी ब्रुनेई यात्रा किसी विशेष उद्देश्य से ही हुई होगी। ऐसा कहा जाता है कि शेल ने ब्रुनेई में तेल की खोज के लिए रियायतें प्राप्त की हैं। जासूस का अनुमान सही था। शेल कंपनी के प्रतिनिधि को अपने कर्मचारियों और इंजीनियरों की एक टीम के साथ ब्रुनेई के जंगलों में तेल की खोज करनी थी। शेल ने तब तक एक एशिया में सिर्फ रॉथस्चाइल्ड कंपनी का तेल बेचने का काम किया था, لیکن یہ رعایت سماپت ہونے والی تھی، اس لیے اب وہ خود تیل کے کنوؤں کا سوامتو چاہتی تھی۔ ایسی استھتی میں روتھ چائلڈ شیل کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے کے لیے مجبور ہوتی۔ شیل کے پریاس ویرتھ نہیں گئے اور برونئی کے ایک پہلے کنویں سے 1897 میں تیل نکلا۔ شیل اب روتھ چائلڈ اور رائل ڈچ دونوں کے ساتھ اچھا کاروبار کر سکتی تھی۔ اس کے 10 سال کے بھیتر ایک نئی کمپنی رائل ڈچ شیل نام کی کمپنی کا جنم ہوا۔ اس نئی کمپنی میں 60% شیئر رائل ڈچ کے اور 40% شیل کے تھے۔ اب یہ دونوں مل کر امریکہ کی دگج کمپنی کے ساتھ دو دو ہاتھ کر سکتے تھے۔ اب اسٹینڈرڈ آئل آف امریکہ کو اس بھاری بھرکم پرتسپردھی کو شروعات میں ہی گھٹنوں پر لانا تھا۔ راکفیلر کی چالوں کے مقابلے میں رائل ڈچ شیل کے پرمکھ کے پاس بھی کئی کارڈ تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایشیا کے بجائے امریکی بازار کا رخ کرے، جس امریکہ میں ہی رائل اسٹینڈرڈ کو گھیرا جا سکے اور یہ لڑائی پرتدوندی کے میدان میں ہی لڑی جائے۔ رائل ڈچ شیل کے پرتندھی نے امریکہ میں کئی چھوٹی تیل کمپنیوں کو خرید لیا اور انہوں نے امریکہ میں تیل خریدنے اور بیچنے کے لیے اپنے پرتندھیوں کے روپ میں استعمال کیا۔ دنیا بھر میں تیل پر قبضہ جمانے والی دگج کمپنیوں کے بیچ پرتسپردھا ادھک سے ادھک جٹل ہو گئی۔ برونئی میں پہلے تیل کے کنویں کی کھوج کے 4 سال بعد ایک فرانسیسی پراتتوید نے، کہ جو دکشنی ایران میں ایک شہر کے آس پاس پراچین کلاکریتیوں کی کھوج کر رہا تھا، ایک لیکھ میں لکھا کہ ایران میں بھی تیل کا کنواں پایا جاتا ہے۔ یہ سماچار سن کر انگلینڈ میں رہنے والے ایک آسٹریلیائی پونجی پتی نے 2 وشیشجھ بھو ویگیانکوں کو ایران بھیجا۔ اس امیر آدمی کا نام ولیم ناکس ڈی آرسی تھا۔ بھو ویگیانکوں نے ڈارسی کو آشوست کیا کہ ایران کی دھرتی کے نیچے تیل کا سمندر ہے۔ ڈارسی نے فوراً ہی اپنے ایک پرتندھی کو ایران بھیجا تاکہ وہ مظفر الدین شاہ قاجار کے ساتھ تیل کی کھوج اور اسے نکالنے کے لیے رعایت حاصل کر سکے۔ شاہ نے روسیوں کے ڈر سے برٹین کے اس انوروھ کا ورودھ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ایران میں روس اور انگلینڈ کے بیچ جم کر پرتسپردھا جاری ہے۔ شاہ کو یہ پتا تھا کہ روسی اپنے پرتدوندوی کو ایسی کوئی رعایت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ برٹش دوتاواس نے ڈارسی سے دھیر رکھنے کو کہا اور بتایا کہ ایرانی دربار میں ہر سمسیا کا سمادھان رشوت ہے۔ برٹش دوتاواس نے وشیشادھیکار پراپت کرنے کے لیے ایرانی دربار کے پردھان منتری سے لے کر شاہ کا حقہ بھرنے والے تک کو رشوت دی تاکہ یہ رعایت حاصل کی جا سکے۔ اس میں شاہ کے پردھان منتری کی بھومکا زیادہ اہم تھی۔ دراصل سمجھوتے پر ہستاکشر بھی پردھان منتری کی چالاکی سے ہی ہوئے تھے۔ امین السلطان یا وہی پردھان منتری نے برٹش راجدوت سے کہا کہ وہ انہیں فارسی میں ایک پتر لکھیں اور سمجھوتے کی شرطیں بتائیں۔ امین السلطان کو پتا تھا کہ روسی راجدوت فارسی نہیں پڑھ سکتے تھے، وشیش کر تب جب یہ شکستہ لپی میں لکھا گیا ہو۔ روسی دوتاواس میں ایک ماتر ویکتی جو یہ لپی پڑھ سکتا تھا وہ دوتاواس کا پورو سچیو تھا، جو کچھ دنوں کے لیے تہران کے اتر میں پہاڑوں کی یاترا پر چلا گیا تھا۔ برٹش راجدوت کا پتر روسی راجدوت کو بھیجا گیا۔ روسیوں کی اور سے کچھ دنوں تک کوئی پرتکریا نہیں ملنے کے بعد امین السلطان نے شاہ کو بتایا کہ روسیوں نے سمجھوتے کا ورودھ نہیں کیا ہے۔ شاہ نے ایرانی جنتا کے ہیتوں کی پرواہ کیے بنا سمجھوتے پر ہستاکشر کر دیے۔ ولیم ناکس ڈارسی کو ایرانی تیل کی کھوج اور نشکرشن کا وشیشادھیکار مل گیا۔ جب سمجھوتے پر ہستاکشر کی خبر روس تک پہنچی تو روسی راجدوت نے کڑا ورودھ جتایا، لیکن پردھان منتری نے نراشا بھرے بھاؤ سے کہا، میں دوشی نہیں ہوں، میں نے آپ کو برٹین کا پتر پہلے ہی بھیجا تھا۔ اگر آپ نے آپتی کی ہوتی تو شاہ نے کبھی انوبندھ پر ہستاکشر نہیں کیے ہوتے۔ اس انوبندھ کے انوسار ایرانی تیل کی کھوج اور نشکرشن کا وشیشادھیکار ڈارسی کو 70 وشوں کے لیے دیا گیا تھا۔ بدلے میں انگریزوں نے تیل کی بکری سے پراپت شدھ لابھ کا 16% شیئروں کے روپ میں اور 20,000 لیرا نقد ایرانی دربار کو بھگتان کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ رعایت ایران کے 5 اتری پرانتوں یعنی روس کے قبضے والے کھیتروں پر لاگو نہیں تھی۔ اس انوبندھ پر ہستاکشر کے ساتھ ہی ایک نئی تیل کمپنی کا جنم ہوا، جس کا نام ایرانی برٹش تیل کمپنی رکھا گیا۔ اس انوبندھ پر ہستاکشر کرنے کے کچھ سمے بعد انگریزوں نے خوزستان پرانت میں تیل کی کھوج کی۔ اس کے کچھ سال بعد ہی 1914 میں پرتھم وشو یدھ شروع ہو گیا۔ یہ پہلا یدھ تھا جس میں ٹینکوں اور آٹو موبائل کا پریوگ کیا گیا تھا تتھا جہازوں کے لیے ایندھن کے کوئلے سے بدل کر تیل ہو گیا تھا۔ शक्तिशाली विस्फोटक TNT ने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया था, जो तेल से प्राप्त होता था। तेल कंपनियां स्टैंडर्ड ऑयल और रॉयल डच शेल प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहयोगी थीं और दुनिया का अधिकांश तेल इंग्लैंड और उसके मित्रों के हाथों में था। हालांकि ब्रिटिश सरकार को तेल के एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता थी, एक ऐसा स्रोत जो स्वयं उसका हो और विभिन्न कंपनियों और देशों की दुर्घटनाओं और षड्यंत्रों के बारे में उसे कभी चिंता नहीं करनी पड़े। इसके लिए एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी सबसे अच्छा विकल्प था। युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए और इसकी प्रमुख मालिक बन गई। फिर उसने कंपनी के तेल का एक बड़ा हिस्सा बहुत कम कीमत पर खुद को बेच दिया। युद्ध के अंत तक ईरानी कुओं से कंपनी का तेल उत्पादन 11 गुना बढ़ गया था और ब्रिटिश सरकार ने सस्ते इलाही तेल को देखकर कंपनी ब्रिटिश सरकार को वास्तविक कीमत से बहुत सस्ते में तेल बेचेगी तो ईरान का लाभ भी बहुत कम हो जाएगा। ईरानी सरकार को 1.5 मिलियन लीरा का नुकसान हुआ। जब ईरानी सरकार को पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिए हैं तो उसने तेहरान स्थित ब्रिटिश दूतावास को विरोध पत्र भेजा। दूतावास ने जवाब दिया कि यह सौदा केवल तेल बिक्री की स्थिति को सुलझाने के लिए किया गया था और ब्रिटिश सरकार कभी भी कंपनी के प्रबंधन या उसके वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ईरानी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर रूस और इंग्लैंड का कब्जा हो गया था और ईरानी सरकार उनसे अपने अधिकारों को वापस पाने में असमर्थ थी जिन्होंने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और उसके सहयोगियों की जीत के साथ समाप्त हुआ और फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कहा, हमने तेल के बल पर यह जीत हासिल की है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप अन्य विषयों पर भी दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi को विजिट कर सकते हैं।